नमस्कार, आज हम एक काफी अनूठे विषय पर बात कर रहे हैं, युग ऋषि की सूक्ष्मीकरण साधना। हमारे पास इसके लिए युग ऋषि की सूक्ष्मीकरण साधना पुस्तक के कुछ अंश हैं, और समझने वाली बात यह है कि 1984 से 86 के बीच जब वो पूरी तरह सक्रिय थे तो अचानक ये गहन एकांत साधना क्यों, जिसे सूक्ष्मीकरण कहा गया। जाहिर है उनके अनुयायियों के लिए ये थोड़ा मतलब असमंजस वाला रहा होगा। पुस्तक में भी परिजनों का असमंजस करके जिक्र है, तो चलिए देखते हैं ये सामग्री क्या कहती है इस बारे में।
जी, असल में ये साधना का एक बहुत ही आप कह सकते हैं युगांतरकारी प्रयोग था। पुस्तक तो इसकी तुलना महर्षि वशिष्ठ या विश्वामित्र या भगवान महावीर और बुद्ध के स्तर के प्रयासों से करती है, जिनका लक्ष्य होता था समाज में युग में बहुत बड़ा बदलाव लाना। तो ये सिर्फ मौन या एकांतवास नहीं था, ये चेतना के स्तर पर एक बहुत गहरा काम था, ऐसा बताया गया है।
हाँ, पर ये थोड़ा चौंकाता भी है, क्योंकि सामग्री ये भी बताती है कि युग ऋषि शरीर और आत्मा के रिश्ते को वो चोली दामन जैसा साथ मानते थे, अपने शरीर के प्रति बहुत कृतज्ञ भी थे, उसे सृष्टा की अमानत, अनन्य सेवक ऐसा कहते थे। तो फिर जीवन भर इतने सक्रिय रहने के बाद अचानक ऐसा कदम जो बाहर से निष्क्रिय लगे, या जैसे कुछ लोग शायद सोचते हों कि ये पलायन है, अनुयायी भी हैरान थे जैसा आपने कहा, उन्हें लगा होगा कि शायद वो थोड़े निष्ठुर हो गए हैं।
बिल्कुल, और यहीं पर वो सूक्ष्मीकरण का जो विचार है वो सामने आता है। पुस्तक यही समझाती है, ये स्थूल से यानी फिजिकल से सूक्ष्म सटल स्तर पर जाने की एक प्रक्रिया है। देखिए, स्थूल शरीर की अपनी सीमाएं है ना, वो एक समय में एक ही जगह काम कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसे कहीं ज्यादा व्यापक बहुआयामी बताया गया है। पुस्तक कहती है कि इसके जरिए भाषा की बाधा के बिना भी विचारों का सीधा आदान प्रदान हो सकता है, और प्रभाव का क्षेत्र वो तो असीमित हो सकता है, कुछ वैसे ही जैसे देवर्षि होते हैं या अदृश्य सहायक जो स्थूल रूप में दिखते नहीं पर मार्गदर्शन करते हैं।
अच्छा, तो इस कदम की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या उस समय हालात मतलब इतने बिगड़ गए थे?
पुस्तक तो समय की वैश्विक स्थिति का बहुत ही गंभीर चित्र खींचती है। दुनिया पर विनाशकारी संकट मंडरा रहे थे, तीसरे विश्व युद्ध का, एक अणु युद्ध का वास्तविक खतरा था, और उसके परिणाम तो खैर कल्पना से भी परे होते हैं।
समाज में भी कुविचार, कुकर्म, उच्छृंखला
ये सब बढ़ रहा था।
पुस्तक में एक जगह तो बहुत तीखी टिप्पणी है कि मनुष्य सामूहिक आत्महत्या की राह पर बदहवास होकर सरपट दौड़ता चला जा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में हाँ, कुछ अलग, कुछ गहरा करने की जरूरत महसूस हुई होगी।
यानी जो सामान्य प्रयास थे, सरकारें, वैज्ञानिक, वो सब काफी नहीं समझे गए।
बिल्कुल, पुस्तक कतर की ही है कि स्थूल प्रयास अपर्याप्त लग रहे थे उस बड़े संकट को टालने के लिए, इसलिए सूक्ष्म स्तर पर चेतना के स्तर पर हस्तक्षेप जरूरी समझा गया, और इस साधना के कुछ खास लक्ष्य भी बताए गए हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, तीसरा विश्व युद्ध टालना।
वो कैसे, मतलब सूक्ष्म स्तर से युद्ध कैसे टाला जा सकता है?
हाँ, तरीका यह बताया गया कि वैश्विक नेताओं के मन में शांति की समझ पैदा करना, उन्हें टकराव से पीछे हटने के लिए प्रेरित करना। पुस्तक में एक पंक्ति है, पीछे हटने में बुद्धिमत्ता है, तो एक तरह का सूक्ष्म सकारात्मक दबाव बनाना उनके विचारों पर।
ये तो हुआ युद्ध टालना, और इसके अलावा और क्या उद्देश्य थे?
दूसरा बड़ा लक्ष्य था समाज के मूर्धन्यों की दिशा बदलना।
मूर्धन्य यानी?
हाँ, मूर्धन्य यानी वो लोग जो समाज को दिशा देते हैं, राजनेता, वैज्ञानिक, बड़े उद्योगपति, विचारक, मनीषी। पुस्तक का विचार है कि इन्हें विनाश के रास्तों से हटाना, जैसे घातक हथियार बनाना, प्रकृति का अंधाधुंध शोषण, प्रदूषण, इनसे हटाकर सृजनात्मक जीवन देने वाले कामों की ओर मोड़ना, जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिले कि वो आम आदमी के काम आने वाले आविष्कार करें, कुटीर उद्योगों के लिए छोटे यंत्र या सस्ती सौर ऊर्जा, इस तरह की चीजें। दार्शनिकों, लेखकों को ऐसे विचार देने के लिए प्रेरित करना जो समाज की समस्याओं का व्यवहारिक हल दें। पुस्तक इसे कहती है जन समस्याओं पर सामयिक, व्यवहारिक एवं तथ्यपूर्ण प्रस्तुतीकरण, मतलब प्रतिभाओं को विनाश का औजार बनने से रोकना। एक जगह तो कहा गया है कि उन्हें कसाई के कुकर की भूमिका से बाहर निकालना।
तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, ये मूल रूप से दुनिया को बचाने के लिए एक विचार क्रांति लाने जैसा प्रयास था, पर स्थूल तरीकों से नहीं बल्कि सूक्ष्म माध्यमों से।
हाँ बिल्कुल, पुस्तक इसे इसी तरह प्रस्तुत करती है। ये सूक्ष्म शक्तियों के जागरण का प्रयास था, जिसे पुस्तक में मनीषा कहा गया है, ताकि बड़े बदलाव लाए जा सकें।
चेतना के स्तर पर काम करने की बात थी ये।
तो संक्षेप में कहें तो जो सामग्री हमारे पास है उसके अनुसार युग ऋषि की ये सूक्ष्मीकरण साधना कोई निष्क्रियता या पलायन नहीं थी, बल्कि ये वैश्विक संकटों के मूल कारण यानी मनुष्य की चेतना और जो दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी सोच, उसको बदलने के लिए एक रणनीतिक कदम था। एक तरह से सूक्ष्म स्तर को ज्यादा प्रभावी मानकर उस पर सक्रिय होने का प्रयास।
जी हाँ, और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ देता है कि क्या इतिहास के जो बड़े मोड़ आते हैं या समाज में बड़े परिवर्तन होते हैं, क्या उनमें केवल बाहरी दिखने वाले प्रयास ही काफी होते हैं, या फिर जैसा ये पुस्तक संकेत करती है, सामूहिक चेतना और सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर जो अनदेखे हस्तक्षेप होते हैं उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है। ये अपने आप में गहरा प्रश्न है सोचने के लिए।